नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जी हाँ, आपका लेसन नंबर 4 है। और शिक्षार्थियों, इसका पहला पार्ट हम आपको सुना चुके हैं, आज उसका दूसरा पार्ट आपको सुनाने जा रहे हैं। और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगो जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पार्ट 2।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे हम एवरी बुक इट्स रीडर। ये है 3rd लॉ हमारे लाइब्रेरी साइंस का। एवरी बुक इट्स रीडर मीन्स यहाँ पर किस बात पे स्ट्रेस दे रहे हैं हम लोग कि हर किताब, हर डॉक्यूमेंट जो हमारी लाइब्रेरी में है, उसका मैक्सिमम यूज कैसे हो सकता है, जो हमारे यूजर्स हैं, रीडर्स हैं, वो हम वहां तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये हमें बताता है कि हर किताब के पास उसका रीडर मिलना चाहिए, मतलब जिसे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बेसिकली वहाँ तक हमें पहुँचाने के साधन जुटाने पड़ते हैं, तरीके निभाने पड़ते हैं कि हम किस तरह से अपनी किताब को उस रीडर तक पहुँचाएं। तो अलग अलग तरीकों से हम ये काम करते हैं, पर ज़्यादातर ये जो है हर इंडिविजुअल के लिए है कि जितने भी नंबर ऑफ रीडर्स जो भी किताबें ढूंढते हैं, जिनके लिए वो किताबें यूजफुल होती हैं, ये जो लाइब्रेरी के स्टाफ हैं वहाँ पर, उनकी भी काफ़ी सारी ड्यूटी इसमें होती है कि हम जो रीडर ने रिक्वेस्ट किया या हमें पता है हमारे ये जो हमारे लोग हैं, रीडर्स हैं, हायर लेवल के हैं और इन्हें ये सब्जेक्ट्स पे काम करना होता है या पढ़ना है या पढ़ाना है या लिखना है, तो हम अपने आप को उसी तरह से तैयार करके रखते हैं अपने यूजर्स के लिए। तो ये जो लॉ है हमारा, ये क्या कहता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें ये कहता है कि ओपन एक्सेस सिस्टम रखो, मतलब किताबों को ताला चाबी में मत बंद कीजिए, इन्हें खुले में रखिए। किताबें क्योंकि इस्तेमाल के लिए है, इससे ज्ञान बढ़ाना है हमने, और अगर कोई नहीं भी चाहता हो तब भी वो किताब को खोल के 4 अक्षर पढ़े तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा रहता है। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हाँ कि हमने पहला स्टेप हटा दिया, जिसमें हमने ताला और वो अलमारी खोलने का ख़त्म कर दिया वो सिस्टम। दूसरा उनका ये कहना है कि इसमें आप क्लासिफाइड हो अरेंजमेंट, अगर आपने ओपन अरेंजमेंट रखा है मगर आपका क्लासिफाइड होना भी ज़रूरी है। ये आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि पूरे यूनिवर्स को डिवे डेसिमल ने 10 क्लासेस में डिवाइड किया, फिर उसी के अंडर हम लोग अपनी, या कोलन क्लासिफिकेशन है जो डॉक्टर रंगनाथन ने ही दी है, उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट को एक सिंबल मिला है या नंबर मिला है, और उनको सबको हम पूरे टाइटल को पढ़ के उसे एक क्लास नंबर क्रिएट करते हैं। वो क्लास नंबर के हिसाब से हम लोग शेल्स में बुक्स को लगाते हैं। तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्रीज में हम लोगों को ये ज़रूरी देखना है कि हर किताब के अंदर जो लिखा गया है, ना कि जो किताब का कवर कहता है हमें या किताब का जो ऊपर टाइटल है उस पर ना जोर देके, बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि अंदर सब्जेक्ट के अंदर क्या है, उसी के अकॉर्डिंगली हम उन किताबों को क्लासिफाई करते हैं, उन किताबों को सही तरीके से रखते हैं, ताकि सेम पॉइंट ऑफ व्यू वाली किताबें, सेम सब्जेक्ट की जो किताबें हैं वो हमें एक ही जगह मिले। उससे हम लोग रेफरेंस के लिए जो सर्विसेज देनी होती है वो भी फास्ट हो जाती है। पब्लिसिटी मेथड्स भी यूज़ करने पढ़ते हैं हमें हमारी अपनी किताबों को रीडर तक पहुँचाने के लिए। तो हम इसकी इम्प्लीकेशंस को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इम्प्लीकेशन इनका ओपन एक्सेस है। इन्होंने ये कहा है कि हमें हमारा जो सिस्टम है वो रीडर्स को अलाउ करना चाहिए कि बुक शेल्फ और बुक आइटम को अपने आप रीडर उठाए, देखे शेल्फ में किसकी क्या किताब है, क्या देखना चाहते हैं, नहीं उनको पसंद आ रहा तो वो वापस रख करके दूसरा देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है ओपन एक्सेस का, जिसको हम खुले में कहेंगे बिना ताला चाबी के किताबों को रखना। ये इसकी फर्स्ट इम्प्लीकेशन के बारे में बात हुई। सेकेंड, जैसे मैंने आपको बताया शेल्फ अरेंजमेंट, वो इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहते हैं भाई, क्लासिफाइड हो बुक्स। क्लासिफाइड जब होंगी किताबें तो आपका जो बुक्स के क्लोजली रिलेटेड सब्जेक्ट्स होंगे, जो एक दूसरे से भी क्लोज होंगे सब्जेक्ट्स, वो आपके आसपास आएंगे, तो उस तरह से किताब को ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। या हम गाइड्स लगा लें, लेबल्स लगा लें, जो हमारे स्टॉक रूम्स होते हैं जहाँ पर स्टैक्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमारे पास नई बुक्स के लिए हम एक अलग जगह रखते हैं, और जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सालों से किताबें जमा होती हैं उनके लिए हम स्टॉक रूम भी बना देते हैं, ताकि जो हमारी पुरानी बुक्स को यूज़ करने के लिए गाइड, स्लिप्स, एरोज, उन्हें सब्जेक्ट वाइज अरेंज करना, मतलब ये बेसिकली सारे टूल्स हैं जो वो दूरी को कम करते हैं जो हमारे एक यूज़र और लाइब्रेरी में है, तो इन सब चीज़ों से हम इन्हें गाइड करते हैं। फिर है ईजी एक्सेस। ईजी एक्सेस का मतलब ये है कि हमारी किताबें जो हैं, एवरी बुक टू गेट हिट्स रीडर इज द बुक दैट मे बी प्लेस्ड विद इन रीच ऑफ एवरीवन, मतलब आप किताबों को इतनी ऊंचाई में नहीं रख सकते हैं कि जहां तक कि किसी का हाथ ना जाए। एक शेल्फ की जो हाइट है वो भी एक कॉमन हाइट होती है, मतलब 6 फीट से 5 फीट से ज़्यादा ना हो, ताकि हम लोग आसानी से रैक तक हाथ हमारा जाए जहाँ से हमें किताब निकालना हो, तो एक एवरेज हाइट के हिसाब से ही रैक को रखा जाए। इन केस किसी स्टैक की बहुत ज़्यादा हाइट है तो वहाँ पर एक हम छोटी सी स्टेप्स मिल जाते हैं, वो स्टेप हम आसपास कहीं भी रख लेते हैं, ताकि एक या दो स्टेप हम अपनी हाइट को एवरेज को उससे बढ़ा के हम वहाँ तक पहुंच जाए। इसके बाद जो एक और टूल है इसमें से क्लासिफिकेशन है, इसमें है कैटलॉग। कैटलॉग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप टूल है, जिससे कि हमारी किताबों की जो इम्पोर्टेंस है वो सभी को आधी वहीं पर नज़र आ जाती है जहाँ पर उसकी बिब्लियोग्राफिकल डिटेल्स देख लेते हैं। ऑथर उन्हें पता चल जाता है, आपका टाइटल पता चल जाता है, सब्जेक्ट पता चल जाता है, और इसमें हम तरह तरह की एंट्रीज को करते हैं, तरह तरह की, इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे टाइटल याद आ रहा है मगर मुझे ऑथर नहीं याद आता। जब मैं उस टाइटल को देखूंगी तो मुझे वहाँ पर उस टाइटल के जितने भी ऑथर्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे। तो हमने इस तरह से अलग अलग ऑथर्स की भी एंट्री करी होती है एक ही टाइटल के नीचे, और जिन्हें हम एडिट एंट्रीज कहते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट से कोई चीज़ याद आ जाती है, हमारा मेन पर्पस ये है आपको जो भी याद आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस डॉक्यूमेंट तक पहुंच पाएं, वो चाहे ऑथर है, टाइटल है, सब्जेक्ट है, कुछ भी है, ताकि आप सूटेबल बुक आपको मिल जाए। एक सीरीज़ भी होती है जिसकी भी हम एंट्री कर देते हैं, उस वो सीरीज़ को करने से क्या हो जाता है, जो उस सीरीज़ की सारी किताबें होती हैं वो आपको इकट्ठे एक ही जगह पे मिल जाती हैं। उससे क्या हो जाता है कि सारे बुक्स जो एक सब्जेक्ट की हैं आपको, उस सीरीज़ की हैं, वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, और वो आपको कभी कभी हम क्रॉस रेफरेंस भी कर देते हैं। क्रॉस रेफरेंस का मतलब होता है कि ये बुक आपको यहाँ भी मिल सकती है, इसके अलावा ये इस हेडिंग में भी मिल सकती है, मतलब हमने उसका नियर बाय जो भी सब्जेक्ट था उससे हमने उसको दोबारा से एंट्री कर दी, ताकि हमने यहाँ पर भी देखा और क्रॉस रेफरेंस में जो पता चला हमें, क्रॉस रेफरेंस में आप जाइए, आप है एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इसको हम दोनों तरह से देख पाएंगे। हम एक बार में एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक एंट्री करेंगे, दूसरी बार हम क्या करेंगे, साइकोलॉजी को पहले करेंगे फिर एजुकेशन को करेंगे। तो आप अगर दूसरी जगह देखेंगे तो आप साइकोलॉजी के थ्रू भी जा सकते हैं और सेम नंबर को जा करके वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ये सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, ये वहीं तक है जहाँ तक मैनुअल कैटलॉगिंग की बात हुई है, जो कि आज से पहले 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले तक ज़्यादातर चलती थी। अब पिछले बहुत सारे सालों से मैनुअल कैटलॉगिंग बहुत कम हो गई है, हो सकता है छोटे छोटे स्कूल्स में हो, अभी ज़्यादातर हमारे पास ज़्यादातर हमारी ऑटोमेटेड लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर हम कंप्यूटर में ही कैटलॉगिंग या क्लासिफिकेशन सभी कुछ वहीं पर, कैटलॉग कार्ड्स बनते हैं। तो ये सारा फिजिकल जो था बुक तक पहुँचने के तरीका, यही सब हम कंप्यूटर के थ्रू भी जाते हैं। कंप्यूटर में भी इसी तरह की रेफरेंसेस होती हैं जो हमें उस टाइटल तक पहुंचाते हैं। अगर हम कंप्यूटर में भी सर्च करना शुरू करते हैं तो अगर नहीं याद आ रहा है टाइटल, कुछ भी याद आ रहा है तो हम सब्जेक्ट से या किसी भी तरह से कोई भी कीवर्ड डाल के हम ढूंढ सकते हैं उस किताब को। तो एक और इसमें है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में जैसे कि आपका लाइब्रेरी का एनुअल रिपोर्ट हो गया, लाइब्रेरी के बुलेटिन्स हो गए, या आपने अपनी कोई मैगजीन निकाल रहे हैं, या आपका अपना एक प्रिंटेड कैटलॉग निकल रहा है, जो कि अब प्रिंटेड कैटलॉग के बदले में हमारे पास उपैक्स होते हैं जो हम सभी लोग 24/7 देख सकते हैं। वहीं पर हमारे लेटेस्ट एडिशंस भी दिखते हैं हमें कि इस महीने में क्या ऐड हुआ है या इस महीने में क्या डिलीट हुआ है, क्या नया आने वाला है। तो ये सब हम चीज़ें पैक में भी देख सकते हैं। ये सब चीज़ों में काफ़ी बदलाव आ गया है, बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लॉ से हम लोग को ये इन इन चीज़ों का इम्प्लीकेशन होता है। डिस्प्ले ऑफ बुक्स में जैसे कि हम लोग फिजिकली देखते हैं, जब हम नई किताबें लेते हैं लाइब्रेरी में तो उसकी एंट्री करने के बाद, उसकी सारी टेक्निकल प्रोसेसिंग करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, हम उसे डिस्प्ले कर देते हैं। हम उसे ऐसी जगह पे डिस्प्ले कर देते हैं जहाँ से एकदम आते ही आपको न्यू अराइवल्स पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में ये नया आया हुआ है। या हम ऐसा करते हैं, हम सभी को मेल कर देते हैं कि हमारे पास ये नई किताबें आई, ये न्यू एडिशन है हमारी लाइब्रेरी का। तो ये सब चीज़ें जो है एक रीडर को उसकी डॉक्यूमेंट तक, उसके बुक तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करता है। तो आप लोगों को जो याद रखना है इसमें से, थर्ड लॉ क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, इसकी इम्प्लीकेशंस को याद रखना है। पब्लिसिटी से होता है, डिस्प्ले ऑफ बुक से होता है, कैटलॉग से होता है, या देर आर मेनी थिंग्स जिससे ये होता है। फिर हम फोर्थ लॉ पे आते हैं। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हर किसी एक लाइब्रेरियन को, चाहे वो छोटा लाइब्रेरी का लाइब्रेरियन हो या बहुत बड़ी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हो। ये हर किसी के माइंड में बेसिक चीज़ है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। वो है कि हमें हमेशा कोशिश यही करनी है कि हम अपने यूज़र का जो है टाइम को बचाएं, उसके टाइम को वेस्ट ना करें। बेस्ट सर्विसेज जो भी हम दे सकते हैं, जिसके लिए हम मेहनत करें उनके लिए, तो उनका टाइम बचे और वो किसी और काम में लगा सकते हैं उसको। तो इसमें टाइम लैग जो होता है, जो डिफरेंस आता है टाइम का, कहाँ से, जहाँ से मैंने कोई, हम सब ने जो भी लाइब्रेरीज में काम करते हैं वहाँ से, जहाँ से आपने डिमांड को रिसीव किया वहाँ तक, जहाँ जब तक मैंने वो डॉक्यूमेंट सप्लाई किया। अगर मुझे किसी ने ये बोला कि आपके लाइब्रेरी में ये किताब है क्या, या किसी ने बोला ये वाला आर्टिकल है क्या, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं कहाँ तक इसे फुलफ़िल कर पाऊँगी, कहाँ तक उनका ये जवाब दे पाऊँगी, जितनी मैं जल्दी करूँगी, जल्दी मैं कैसे कर पाऊँगी, जब मुझे खुद को मालूम होगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और मुझे भी टिप्स पे नहीं होगी हर चीज़, मैं भी सर्च करूँगी इन्हीं टूल्स के थ्रू, चाहे वो अब फिज़िकल हमारे कैटलॉग्स हैं क्लासिफाइड मैनर है, या मैं उसे ओपैक से करूँगी, कंप्यूटर पे बैठ के ढूँढूँगी और फटाफट इसे निकाल के दे दूँगी, बता दूँगी कि हाँ ये हमारे पास है या नहीं है, या हम कहीं और से इसे बोरो कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। नहीं खरीदना है तो बोरो करके भी दे सकते हैं, इंटरलाइब्रेरी लोन पे भी दे सकते हैं। तो मेन एम है हमारा, हम टाइम सेव करना है अपने यूज़र को। ये जो है अप्रोच, ये हमारे अप्रोच ज़्यादातर क्या है, ये हमारे यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें हमें जैसे सर्विस सेक्टर जो भी होता है उनके लिए कौन इम्पोर्टेंट होता है, उनका ग्राहक, हमारे लिए हमारा यूज़र इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप यूज़र को जितना अच्छे से ट्रीट करेंगे, जितने अच्छे से आप उसके काम आएंगे, उनके काम को सहूलियत के हिसाब से उन तक पहुंचाएंगे, तो उतनी ही आपकी लाइब्रेरी तरक्की करेगी, उतना ही आपकी लाइब्रेरी का यूसेज होगा। तो ये कम्प्लीटली जो है ये यूज़र सेंट्रिक है। इसमें हम ज़्यादा जोर जो दे रहे हैं यूज़र पे दे रहे हैं, और ये सभी लोगों को, हम जो भी काम करते हैं लाइब्रेरी में, उन सबको दिमाग में ये पॉइंट ज़रूर रखना होता है कि हमें ज़्यादा इधर उधर उलझाना नहीं है चीज़ों को, इंस्टेंट हम उसे आसान करके, उनका टाइम सेव करके, व्हाट बेस्ट वी कैन गिव, सबसे अच्छा जो हम कर पाएंगे वो हम वहाँ तक पहुँचा दें, उन तक पहुँचा दें। बेटर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं और लाइब्रेरी ऑपरेशंस जो भी हैं, जो हम अपने यूज़र्स को भी ट्रेनिंग दिलाते हैं। अगर मेरी लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, अगर मेरे यूज़र्स नहीं यूज़ कर पाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर उनके टेबल पर वो नई चीज़ खुल पाती, वो ये नहीं देख पाते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स हैं, तो फिर इसका मतलब है मैं उनके लिए ट्रेनिंग नहीं कर पाई हूँ। इन सब चीज़ों के लिए हमें सभी को अवेयर करना पड़ता है, तभी उनका टाइम जो है वो बच जाता है। ये हो गया फोर्थ लॉ। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? सबसे पहला जो फोर्थ लॉ का इम्प्लीकेशन है वो है क्लासिफाइड अरेंजमेंट। तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट जो है किताबों का स्टैक्स पे, सबसे ज़्यादा ये टाइम सेव करता है। आप कैसे भी देखेंगे, आप अगर ओपैक से भी जाएंगे, वेब ओपैक से भी, कहीं से भी आप जाइए, आपका बिना क्लासिफाइड के आप किताब तक नहीं पहुंच सकते। क्लास नंबर ही एक वो नंबर है, जैसे हमारा इंडिविजुअली देखा जाए तो हमारे नाम से हमें लोग जानते हैं, तो लाइब्रेरी में किताब को क्लास नंबर से जाना जाता है, क्योंकि कॉल नंबर जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती है। क्लास नंबर होता है, बुक नंबर होता है, नंबर ऑफ कॉपीज़ होती है, कभी कभी हम लोग रैक की पोजीशन भी बता देते हैं कहाँ पर हो सकता है ये। तो जो कॉल नंबर है ये बहुत बड़ा एक अच्छा टूल है हमारे यूज़र्स तक पहुँचने का। जो अरेंजमेंट फिर हम एंट्रीज जो कैटलॉग कैबिनेट में होती हैं, अगर वो भी क्लासिफाइड मैनर में हो, मतलब आपका हमारा ये है कि जैसे जो कैटलॉग हमने बनाया उसमें अगर हमने एजुकेशन के जो हैं सारे ही 370 के जो हैं, हमने उनको सबको एंट्री को हमने क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया, तो हमें एजुकेशन का सारी बुक्स जो हैं, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी बुक्स जो हैं, वो हमें एक ही जगह पे मिलेंगी। तो ये देखा जाता है जो क्लासिफाइड अरेंजमेंट है ये हमारे बुक्स को भी अरेंज करने में और कैटलॉग कार्ड्स को भी अरेंज करने में काफ़ी मदद करता है। तो क्लासिफाइड अरेंजमेंट ज़्यादातर जो है स्टैक्स के लिए भी अच्छा माना जाता है, इससे हमारी बुक्स आसानी से यूज़ हो जाती हैं। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है हमारा कैटलॉग। कैटलॉग की एंट्री में हम काफ़ी हद तक जो है क्लासिफाइड अरेंजमेंट जो है काफ़ी सफिशिएंट है हमारा टाइम को सेव करने के लिए। जैसे मैंने कहा कि किताबों को क्लासिफाई करने के बिना तो उनका कोई वजूद नहीं दिखता है लाइब्रेरी में, वो एक स्टोर की तरह हो जाएंगे। अगर देखा जाए तो स्टोर में भी आपको क्लासिफाई करना ही पड़ता है किसी न किसी तरीके से, पर लाइब्रेरी साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लाइब्रेरीज इतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं और बुक्स इतनी तरह की हैं, वैरायटी के हैं और इतनी ज़्यादा हैं, तो उसमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करते हैं उसी से काफ़ी हद तक हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइम को सेव करना वो हमारा अचीव हो जाता है। द वेरियस फेसेट्स ऑफ कंपोजिट बुक, जो अब किताबें कंपोजिट होती है ना, काफ़ी किताबें ऐसा होते हैं एक वॉल्यूम में नहीं होती हैं, कई चार पांच वॉल्यूम्स में होती हैं, तो उन किताबों को एकदम पास में रखना, इकट्ठे उन्हें रखना या क्रॉस रेफरेंसेस से उनको एक जगह पे लाना, तो इस तरह से जो भी किसी भी तरह से डाइवर्स अप्रोच से, अलग अलग तरह के अप्रोच से, जहाँ भी आप कैसे भी पहुँचेंगे उस किताब तक पहुँचेंगे, चाहे वो ऑथर से आप पहुँच रहे हैं, टाइटल से पहुँच रहे हैं या किसी सीरीज़ के अप्रोच से पहुँच रहे हैं, कैसे भी करके जहाँ भी आप पहुँच रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप वहीं पर पहुँच रहे हैं जहाँ हमें वो किताब को खोजना है। और खोजने के लिए हमने बहुत सारे जो तरीके हैं, टूल्स हैं, वो हमने एक कैटलॉग में भी बनाए हैं। जो भी आपको जब भी याद आता, अगर आपको एक सीरीज ही याद आता है, पब्लिशर याद आता है, तो आप उसके थ्रू पहुंच सकते हैं। इसके बाद है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस इसमें भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, कहता है टाइम को सेव करने के लिए क्लोज एक्सेस सिस्टम जो है उसे बिल्कुल ही स्ट्रांगली अपोज किया गया है। उसे कहा गया है कि नहीं, क्लोज तो किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए कोई भी लाइब्रेरी, तो वहाँ से हमारा टाइम भी सेव हो सकता है। फिर रेफरेंस सर्विसेज की बात है। रेफरेंस सर्विसेज में आप सबको पता है कि अगर आप कोई भी अपनी क्वेरी लेके आते हैं और वो हम जल्द से जल्द आप तक आपको सॉल्व करके देते हैं, तो ये रेफरेंस सर्विसेज हैं बेसिकली। तो इसमें आपका टाइम भी बच जाता है, जैसे आप हम ज़्यादातर गूगल में हर चीज़ डाल देते हैं और पहले इतना ज्यादा गूगल का नहीं था अप्रोच, तो हम लोग लाइब्रेरी में जा करके अपनी क्वेरी को लेके चले जाते थे या किसी डाटा से रिलेटेड कोई काम होता तो रेफरेंस सर्विसेज ही ऐसी एक सर्विस थी जो हमें लाइब्रेरी देती थी, जिसमें उनके पास काफी नॉलेज रहती थी, बुक्स हर तरह की रहती थी और उन्हें ये भी मालूम होता था कि किस बुक को हमें कहाँ पर, किस रेफरेंस डॉक्यूमेंट को हमें कहाँ यूज करना है और कितनी एफिशिएंसी से यूज करना है, और ताकि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकते हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे भी आपका टाइम जो आपके यूजर्स का है वो काफी हद तक सेव हो जाता है और जो आपके अननेसेसरी जो आपका टाइम बर्बाद होने का जो वहां पर मौका मिलता है वो आपको नहीं करते, हम आपको सपोर्ट करते हैं, वहां पर लाइब्रेरी स्टाफ आपको सपोर्ट करता है, आपकी जो भी डिमांड्स होती हैं उन्हें फुलफिल कर देते हैं। तो हम ज्यादातर वहां पर कैसे करते हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है एक कम्युनिकेशन होना, जो आपका लाइब्रेरी स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, जो हम भी जो है उसका और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन होना बहुत ही जरूरी है, हम आपकी बात को अच्छे से समझें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जिनमें कि हम कह सकते हैं गाइड्स जो बनाए हुए होते हैं हमने, कि यहाँ पर ये किताब है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, हमने वो क्लैरिटी से लिखे गए हों, और अगर हमने कोई कैटलॉग कार्ड्स दिए हैं वो भी टूल्स की तरह, वो भी क्लैरिटी से सफाई से लिखा गया हो, और ताकि आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन टूल हमें यूज करना है वो अच्छे से समझाया जाना चाहिए, ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए यूजर्स की, उन्हें बताने के लिए वहां पर बहुत तरीके हैं जिनसे हम उन्हें बता सकते हैं कि आप इस शेल्फ में जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको, यहाँ जाएंगे तो ये, जो अब वेब ओपैक या ओपैक भी काम करता है, ये पहले तो ह्यूमन बीइंग्स जो हमारे लाइब्रेरी के स्टाफ थे ज़्यादातर रेफरेंस जो था उन्हीं के थ्रू होता था। तो इसमें अभी भी अगर आप देखेंगे लाइब्रेरी स्टाफ को हम्बल, फ्रेंडली, डिवोटेड होना बहुत ही जरूरी है, ताकि हमारे जो विजिटर्स हैं वो हमारे पास आने से ना घबराएं और वो हमसे मदद लें और उनका काम ज्यादा जल्दी से जल्दी हो जाए। एक और फैक्टर है उसमें फिर है, वो है इशू मेथड। इशू मेथड में जो भी सर्कुलेशन होती है लाइब्रेरी के, अगर मेरा इशू मेथड लाइब्रेरी का कन्वीनियंट होगा, आपको भी आराम से किताबें इशू हो जाती हैं, रिटर्न हो जाती हैं आपकी, मैंने कौन सा मेथड यूज किया है और आपके पास कितनी किताब है, कितनी वापस की है, कब वापस हुई है, या लोन पे किस पर्सन के पास ये किताब है, मुझे चाहिए, मंगवा सकती हूँ मैं, ड्यू डेट कब है, ये सब चीज़ें हम आप तो थ्रू सॉफ्टवेयर ही करते हैं, मगर सॉफ्टवेयर में भी आपको समझाना, हमेशा यूजर्स को, नए यूजर्स को समझाना पड़ता है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ ये आपकी आईडी है, ये आपका पासवर्ड है, ये आप खोल के देख सकते हैं आपके पास कितनी किताबें हैं, और अगर किसी और का आपको किताब ढूंढना है, ये किताब आपको चाहिए, तो वो भी आप कैसे ढूंढ सकते हैं। सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम देंगे, उससे भी काफ़ी हद तक टाइम की बचत हो जाती है। फिर जो हमारा फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी का है, वो है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने, रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी को एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा है, ये उनका आइडिया उन्होंने सोच समझ के लिया है, उन्होंने देखा जैसे कि एक ग्रोथ किसी की भी, एक ह्यूमन बॉडी की ही ग्रोथ अगर होती है, जहाँ से बच्चे को आप देखेंगे तो वो हर तरह से बड़ा हो जाता है, इसी तरह से आप देखेंगे लाइब्रेरी भी हर तरह से बड़ी होती जाती है। हम अगर आज लाइब्रेरी का निर्माण करते हैं, कोई इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हमें अगले 20-30 सालों के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए होता है कि हम ये लाइब्रेरी कितनी ग्रो कर सकती है, हमारे पास कितना स्पेस होना चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज़ अगले 30 साल तक काम करेंगी, ये सब चीज़ों को हमें दिमाग में रखना पड़ता है। तो लाइब्रेरी को एक इंस्टीट्यूशन की तरह लिया गया है, लाइक एक जो उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो आप हर तरह की हाउसकीपिंग को लेकर आप देखें, तो अगर आपकी बुक्स की इनटेक अच्छी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो आप वहाँ देखेंगे उसी तरह से हर डिपार्टमेंट में, उसमें हर यूनिट का काम उसी तरह से बढ़ता रहता है। ओल्ड जो बुक्स हैं जो खराब हो रही हैं, उन्हें कैसे हम कास्ट ऑफ कर लेते, निकाल देते हैं, देखते हैं कि जो साइज में जो चीज़ें हैं बढ़ती जाती हैं दिन ब दिन, आप देखेंगे लाइब्रेरी को एक ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी की तरह ही उन्होंने देखा है। लाइब्रेरी साइंस में ट्रिनिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर को माना जाता है। बहुत लाइब्रेरी में तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, एक है किताबें, दूसरा है रीडर और तीसरा है लाइब्रेरी का स्टाफ। ये तीनों चीज लोगों को आपस में मिलजुल के काम करने से एक ट्रायंगल बनता है, जो ट्रायंगल देखा जाए तो आपस में जुटे रहने से एक दूसरे का काम हो जाता है। कौन सी किताब किससे चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, तो ये आपस में तीनों लोगों को ज़रूर मिलके काम करना होता। ये देखा जाए तो लाइब्रेरी में जो अथॉरिटी जो प्लान करती हैं बिल्डिंग को और जो स्पेस को या बजट को, उसके कलेक्शन को रीडर्स को देखकर किया जाता है, कि उसमें स्टाफ का भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आपका स्टाफ भी ग्रो होते रहना चाहिए। उनकी ग्रोथ होती रहेगी, आप नए लोग लाते रहेंगे और आपकी लाइब्रेरी भी बढ़ती जाती है। रंगनाथन ने इसे दो तरह से डिस्क्राइब किया है, एक बॉडी ऑफ अ चाइल्ड, एक छोटे बच्चे की जो बॉडी है वो, और ग्रोथ बॉडी ऑफ एन अडल्ट। ये दो तरह से रंगनाथन जी ने लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी को इलैबोरेटेड वे में कहा गया है। उन्होंने ग्रोथ में ये कहा, जैसे रिपोजिटरीज होती हैं, उन रिपोजिटरीज में आप देखेंगे हमेशा वो बढ़ती जाती हैं, और लाइब्रेरी वो बच्चे की तरह है, मतलब आप हर तरह से बढ़ रहे हैं। और जो लाइब्रेरी की सर्विसेज हैं वो हम अकॉर्डिंगली उन्हें भी उसी के हिसाब से बढ़ाना पड़ता है। ये नहीं कि हम अगर अपनी क्लासिफिकेशन को या कैटलॉगिंग जो है हमारी या जो हमारा ओपैक है हम उसे अपडेट ना करें, और हमारी जो न्यू कलेक्शन है वो हम अपने यूज़र्स तक ना पहुंचाएं, तो हमारी जो सर्विसेज हैं अगर वो नहीं बढ़ेंगी तो लाइब्रेरी की ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह से हम लोग एडिशनल मटेरियल जो लाइब्रेरी में आते हैं तो ऑब्सोलीट चीज़ों को निकालना चाहिए। एक साइज है, मतलब जैसे कि एक अडल्ट की बॉडी एक साइज तक पहुंच जाती है, उसके बाद उसका ग्रोथ करना बहुत फ़ायदेमंद नहीं होता है। इसी तरह लाइब्रेरी में भी कहा गया है, जो कि वीडिंग आउट है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उसको एक बियॉन्ड अ लिमिट ग्रो करना, बहुत ज़्यादा फैलना भी ठीक नहीं है। तो वहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी किताबें हैं या पुराने फर्नीचर्स हैं, उन्हें हमें वीड आउट करते रहना चाहिए। ये फिफ्थ लॉ के इम्प्लीकेशंस में क्या है, ग्रोथ इन साइज। एज द बॉडी ऑफ चाइल्ड ग्रोज स्टडीली इन साइज वेट, सिमिलरली लाइब्रेरी ऑल्सो ग्रोज। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने एक छोटे बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से लाइब्रेरी को कहा है कि लाइब्रेरी की जो ग्रोथ है वो उसी तरह से स्टार्टिंग में होती है कि फास्टर ग्रोथ होती है। उसमें हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग भी आती है, स्टैक एरिया हो गया, सर्कुलेशन एरिया हो गया, रीडिंग रूम हो गया, या ग्रोथ ऑफ रीडर्स जो है आप देखेंगे, साइज जो है रीडर्स का वो भी बढ़ता जाता है। रीडिंग रूम बड़ा होना है, इशू मेथड बेटर होना चाहिए, या सर्टन सेफगार्ड्स जो हैं ओपन एक्सेस सिस्टम में आपका चोरी से बचाना है आपको अपनी लाइब्रेरी को, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जब आप ये सब सर्विसेज दे रहे हैं, स्टाफ है लाइब्रेरी है, तो आपकी जो ग्रोथ जो स्टाफ की है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मटेरियल जब और रीडर्स आपका बढ़ जाता है तो आपका जो है नंबर इंक्रीज हो जाना चाहिए स्टाफ का, जो कि मतलब बहुत ही अनिवार्य समझा गया है। बुक सिलेक्शन एक्टिविटी है, कैटलॉगिंग है, बाइंडिंग सेक्शन है, पीरियोडिकल सेक्शन है, रेफरेंस सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शंस में हर सेक्शन में ग्रोथ हो रही है तो आपके लाइब्रेरी स्टाफ का जो है उसमें भी ग्रोथ होना बहुत ही ज़रूरी है। और लाइब्रेरी स्टाफ जो है ट्रेंड हो, वेल क्वालिफाइड हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रेनिंग्स पीरियोडिकली दी जानी चाहिए। जिस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से हर समय कुछ ना कुछ बदलता रहता है, लाइब्रेरी साइंस में नहीं हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बदलता रहता है, तो उसके एनवायरनमेंट के साथ साथ हमें अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। लाइब्रेरीज आज से 50 साल या 100 साल पहले जैसी थी आज नहीं है, बहुत हद तक बहुत कुछ बदल गया है। वही हमने पीरियोडिकली अपने आप में चेंजेस लाए और इन्हें एक्सेप्ट किया, इन्हें सोचा, सीखा और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह लाइब्रेरी के ये जो 5 लॉज रंगनाथन जी ने दिए थे ये हमने अप्लाई किए हैं. तो अब जो मॉडर्न वर्जन है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया है उन्होंने. मॉडर्न वर्जन में अमेरिका ने एक इंटरप्रिटेशन की है रंगनाथन जी के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस को 1975 में. उन्होंने क्या किया, जो बुक्स आर फॉर यूज है उसमें उन्होंने फिल्म, टेप्स, रिकॉर्ड्स, रिलेक बुक्स सभी को इंक्लूड किया, खाली किताबों को नहीं रखा. फिर जो एवरी रीडर हिज बुक है, एवरी रीडर हिज हर मीडियम कर दिया, क्योंकि बहुत सारी मीडियम्स भी है, बहुत सारी लैंग्वेजेस भी हैं पढ़ने की. एवरी बुक इट्स रीडर. सो एवरी टेप, एवरी रिकॉर्ड, क्योंकि लाइब्रेरी में अगर खाली किताबें नहीं है, टेप भी है, सीडी भी है, वीडियोज भी हैं, बहुत कुछ है. तो हर यूटिलिटी को उन्होंने अलग से नाम दिया. सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द डाउन टाइम ऑफ द पैटर्न. कोई भी यूजर का टाइम आपका सेव होना चाहिए. लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लर्निंग रिसोर्स सेंटर इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. उसका इन्होंने दूसरा नाम दे के दिया, लर्निंग रिसोर्स सेंटर बनाया लाइब्रेरी को नाम दे करके, जहां पर हर तरह के रिसोर्सेज रहते हैं, ना कि खाली किताबें रहती हैं. फिर 1992 में जेम्स आर रेटिंग ने 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस निकाला. जैसे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले 5 में चेंजेस क्या लाए उन्होंने, ये आपको सभी कुछ याद रखना है. ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं कि जिम थॉम्सन 1992 में उन्होंने रिवाइज करके बोला, बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, एवरी रीडर हिज बिल, एवरी कॉपी इट्स रीडर, टेक द कैश फ्रॉम द रीडर, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म. वो ये कह रहे हैं कि हम फ्री में हर चीज नहीं कर सकते हैं, चाहे आप मिनिमम एक कॉस्ट रखें, लाइब्रेरी की फी रखें, कुछ भी कहें, जिससे कि आप शायद सर्विसेज पे ही ये खर्चा कर लें, उन्हीं यूजर्स पे वो खर्चा कर लें, मगर डेफिनेटली लाइब्रेरी को, बुक्स को हमें प्रॉफिट में जरूर यूज करना चाहिए, ना कि हम उन पे खर्चा करें और लोग समझ लें कि ये तो फ्री में है, इसका कोई वैल्यू नहीं है. तो इसकी कोई वैल्यू ज्यादा समझते नहीं है. फिर उनका ये कहना है कि बुक्स के लिए भी हमें, वी शुड चार्ज पीपल मिनिमम. तो 6th लॉ जो उन्होंने जो ऐड हुआ है यहाँ पर, वो है एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी को बनाने वाले कौन लोग हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया, उन्होंने ये ऐड कर दिया कि एवरी राइटर, जो भी सब्जेक्ट, जो भी किताबें लिखते हैं, जो भी मैगजीन्स छापते हैं, जो भी जर्नल्स छापते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लाइब्रेरी भी एक लॉ होना चाहिए, ताकि उन लोगों को लेफ्ट आउट ना फील हो. फिर 1998 में मिशेल गॉडमैन ने एक और लाइब्रेरीज 5 लॉज को एक्सटेंशन दे दिया. उन्होंने क्या बोला, लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी, रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म्स बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, यूज टेक्नोलॉजी इंटेलेक्चुअली इन टू एनहांस सर्विसेज, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, ऑनर द पास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर. ये इन्होंने चेंजेस लाए. इन्होंने कहा लाइब्रेरी जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए जरूर है. आप हर तरह की नॉलेज को कम्युनिकेट कीजिए हर फॉर्म में, ना कि खाली लिखाई पढ़ाई से, सुनने से भी, एक्शन से भी, जैसे कि हमारे पास साइन लैंग्वेज है, ये भी एक फॉर्म है कम्युनिकेट करने का, इसे भी जरूर करिए. टेक्नोलॉजी जो है उसे इंटेलेक्चुअली आप उसे एनहांस कीजिए, उससे अपनी सर्विसेज को बेटर कीजिए. फ्री एक्सेस जो है नॉलेज का जो है उसे प्रोटेक्ट कीजिए. जैसे हम कहते हैं कि ये हम, आपने अगर कुछ आज अपनी किताब छापी उसे मैं अपना नहीं कह सकती, उसको मैं अपने फॉर्म में लिख लूं, बट आई हैव टेक्नोलॉजी यू, इन दैट केस वो जो है वो प्रोटेक्शन जरूर होना चाहिए नॉलेज का, बिकॉज दैट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. वो कहा गया इसमें, ऑनर द पास्ट, जो भी हमारे पीछे हमने किया उसे जरूर याद रखे, उसकी बहुत कीमत है, मगर हमें फ्यूचर को क्रिएट करना है. इस तरह से लॉज बदलते गए हैं. फिर 2004 में अल्जीरिया नॉर्डजिया एम्प्लाइड रंगनाथन्स 5 लॉज ऑन पेपर एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन्स लॉज टू वेब. उन्होंने ये कहा कि अब जो लाइब्रेरीज थी अभी बुक्स पे या पैम्पलेट्स या टेप्स, सीडीज, वीडियोस, ये सब पे जो हो रहा था, मगर अब इसके बाद और भी कुछ बदल गया, वो है वेब पे आ गए हम, हमारे पास इंटरनेट एक्सेस आ गया. तो इन्होंने सारे 5 लॉज में क्या अमेंडमेंट कही करने को, उन्होंने कहा वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, जो हमारे जैसे ई रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जिन्हें कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वेब रिसोर्सेज आर फॉर यूज, एवरी यूजर हिज आर हर वेब रिसोर्सेज. हर इंसान जो फिजिकल लाइब्रेरी यूज करता है वही तो वेब रिसोर्सेज भी यूज करता, उसके वेब रिसोर्सेज और हर वेब रिसोर्स जो है, एवरी वेब रिसोर्स है उसका अलग अपना रीडर जो है, सेव द टाइम ऑफ द रीडर सेम, वेब इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइब्रेरी को ग्रो करते हैं, इसमें ऐड करते रहते हैं, एडिशन होता रहता है हर साल, जो हमारी लाइब्रेरी आज से 25 साल 30 साल पहले नहीं थी वो आज जो है वो ग्रो हुई है। इसी तरह हमने अगर एक इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी स्टार्ट की, आज अगर उसमें 5,000 किताबें हैं, 10,000 किताबें, तो ये ग्रो होती रहेंगी, तो वेब रिसोर्सेज will keep on growing। ये इस तरह से इन्होंने चेंज कर दिया लॉज को। तो इसके बाद 2008 में कैरल सिम्पसन ने, उन्होंने मीडिया पे जोर दिया, मीडिया आर फॉर यूज एवरी पैटर्न हिज इंफॉर्मेशन। तो आई होप जो हमने आज आपको पढ़ाया, हमने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात की, 5 लॉज किए, उसके अलावा जो जो चेंजेस इन लॉज में बाद में लाए गए हैं रंगनाथन के 5 लॉज को, वो सब भी मैंने आपको बता दिया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।